अध्याय 8 आर्थिक और राजनीतिक जीवन क वैदिक अर्थव्यवस्था। कृषि का महत्व। मानव जीवन का आधार अन्न है। अन्नों की प्राप्ति कृषि से होती है। कृषि के लिए भूमि और पर्जन्य अथवा वर्षा की आवश्यकता है। अतएव अथर्ववेद में भूमि और पर्जन्य को नमस्कार किया गया है। कृषि कार्य गौरव का कार्य माना जाता था। अतएव इंद्र और पुषा देवों को कृषि कार्य में लगाया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि द्यूत आदि दुर्गुणों को छोड़कर सुख के लिए कृषि करो। यजुर्वेद में राजा के 4 प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं। 1 कृषि की उन्नति, 2 जन कल्याण, 3 राष्ट्र की श्री वृद्धि और 4 राष्ट्र को पुष्ट बनाना। इनमें कृषि को सबसे अधिक प्रमुखता दी गई है। शतपथ ब्राह्मण में पूरे कृषि कर्म को 4 शब्दों में वर्णन किया गया है। 1 कर्षण खेत की जुताई करना, 2 वपन बीज बोना, 3 लवन पके खेत की कटाई करना, 4 मर्दन मड़ाई करके स्वच्छ अन्न प्राप्त करना। कृषि का आविष्कारक राजा पृथ्वी अथवा पृथु। ऋग्वेद और अथर्वेद में राजा वेन के पुत्र राजा पृथु को कृषि विद्या का आविष्कारक बताया गया है। उसने कृषि विद्या के द्वारा अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न किए। इस बात का समर्थन महाभारत शांति पर्व और भागवत पुराण में किया गया है। ऋग, यजुः और अथर्वेदों में कृषि कर्म से संबद्ध अनेक सूक्त हैं। इनमें कृषि संबंधी मुख्य बातें दी गई हैं। 1 बीज बोने से पहले खेत को ठीक ढंग से स्वच्छ करें। 2 कृषि हेतु बैल हल आदि उत्तम हो। 3 उत्तम कोटि के बीज बोए जाएं। 4 अनुकूल ऋतु में बीज बोवें। 5 यथा समय सिंचाई निराई करें। 6 खेती तैयार होने पर कटाई मड़ाई करें। भूमि के भेद। अथर्वेद, यजुर्वेद और तैतृय संहिता में भूमि के कई भेदों का उल्लेख है। 3 मुख्य भेद ये हैं, उर्वरा उपजाऊ, ईर्ण ऊषर शष्प्य चरागाह के योग्य। मिट्टी के भेद। यजुर्वेद, तैतृय संहिता और अथर्वेद में मिट्टी के कतिपय भेदों का उल्लेख है। ये हैं मृद, मृत्तिका, रजस भूमि, अश्मा अश्मनवंती, किंशिल इरण्य वाली खेती के लिए अनुपयुक्त, उर्वरा उर्वर्य, सिकता सिकत्य। कृषि के भेद। कृषि के 2 भेद का उल्लेख है। ये हैं 1 वर्ष वर्षा पर निर्भर रहने वाली कृषि, 2 अवर्ष वर्षा पर निर्भर न रहने वाली अर्थात कुंड तालाब नहर आदि सिंचाई के अन्य साधनों पर निर्भर। कृषि के अन्य 2 भेद का उल्लेख मिलता है। ये हैं 1 कृष्टपच्च जुते खेत में कृषि द्वारा उत्पन्न अन्न, 2 अकृष्टपच्च बिना जुती भूमि में उत्पन्न अन्न जैसे जंगली धान फल फूल। सिंचाई के साधन। वेदों में सिंचाई के इन साधनों का उल्लेख मिलता है। 1 वर्षा, 2 कुल्या नहरों से सिंचाई, 3 नदियों से, 4 तालाबों आदि से, 5 कुएं के जल से। सस्य या फसलें। तैतृय संहिता में 2 फसलों का उल्लेख है। इन्हें शारदीय और वासंती कहते हैं। तैतृय संहिता में ही अन्य 4 फसलों का कटने की ऋतु के नाम से उल्लेख किया है। ये हैं ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर में कटने वाली फसलें। इनके अन्नों का भी क्रमशः निर्देश है। जौ औषधियाँ चावल तथा मांस तिल अन्नों के नाम। यजुर्वेद और तैतृय संहिता में 12 अन्नों के नाम दिए हैं। ये हैं 1 ब्रीही, 2 यव, 3 मांस, 4 तिल, 5 मुद्ग, 6 खल्व, 7 प्रियंगु, 8 अड़ु, 9 श्यामाग, 10 निवार, 11 गोधूम, 12 मसूर। खाद अथवा उर्वरक। उर्वरक के लिए ऋग्वेद में क्षेत्र साधस शब्द है। वेदों में खाद के लिए ये शब्द हैं करीश शकन शकृत। यह खाद गाय बैल भैंस आदि की होती थी। वेदों में खाद के लिए गोमय शब्द का उल्लेख नहीं है। कृषिनाशक तत्व। कृषिनाशक तत्वों को इति कहते हैं। अथर्वेद में कृषिनाशक इन तत्वों का उल्लेख है। 1 अतिवृष्टि और अनावृष्टि। विद्युत और सूर्य की कड़ी धूप कृषि को नष्ट न करे। अतिवृष्टि में बिजली गिरना और अनावृष्टि में तीव्र धूप का होना। 2 तीव्र धूप और हिमपात ये दोनों कृषि को नष्ट न करे। 3 आंखू। कृषिनाशकों में चूहा का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। इसे मारने का निर्देश है। 4 तर्द पतंग जभ्य और उपक्वस ये भी कृषिनाशक हैं। तर्द कफ फोड़वा पतंग टिड्डी जभ्य और उपक्वस कृषि को नष्ट करने वाले कीट पतंग है। छांदोग्य उपनिषद में टिड्डी के लिए मटची शब्द आया है। एक बार पूरे कुरु जनपद की खेती टिड्डियां खा गई थी। कृषि से संबद्ध शब्द। 1 किनाश किसान कृषक। 2 हल हल के लिए लांगल और सीर शब्द है। 3 सीता फाल, हल के अगले नुकीले भाग के लिए सीता और फाल शब्द है। हल की नोक से बनी रेखा या लकीर को भी सीता कहते हैं। 4 शुना सिर, हल का डंडा और फाल। 5 ईशा, हल की लंबी लकड़ी। 6 युग, जुआ बैल के कंधे पर रखा जाने वाला। 7 वरत्रा, हल और जुए को बांधने की रस्सी। 8 अष्ट्रा, चाबुक या छड़ी जिससे किसान हांकता है। 9 वाह बैल। अथर्वेद और काठक संहिता में जुओं वाले हलों का वर्णन है। एक जुए में 2 बैल लगते थे, अतः 12, 16 और 24 बैलों वाले हल भी काम में आते थे। 10 दात्र श्रेणी, दराती, हंसिया। पशुपालन, ऋग्वेद और अथर्वेद में पशुपालन और पशु संवर्धन से संबद्ध कई सूक्त हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व भर में पशु संपदा वैभव का प्रतीक था। पशु संपदा दैनिक जीवन का अभिन्न अंग था। घी, दूध, दही, मक्खन आदि दैनिक आवश्यकताएं थी। कृषि कर्म, यातायात और भार वाहन के लिए बैल, अश्व आदि की आवश्यकता थी। यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए गायों की आवश्यकता थी। अतएव पशुपालन और पशु संवर्धन सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के विषय थे। प्राचीन आर्यों ने इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए गोष्ठ, गोशाला, ब्रज आदि की स्थापना की थी। ब्रज एक प्रकार से प्राचीन थे। ऋग्वेद में अतएव निर्देश दिया गया है कि ब्रजम क्रीडुध्वम अर्थात ब्रज बनाओ, क्योंकि यह नृपाड़ह है। यह मनुष्यों की पेय और खाद्य वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ब्रज गोशाला के रूप में होते थे, अतः इन्हें गोष्ठ कहते थे। यजुर्वेद में गोशाला के लिए गोष्ठान शब्द भी आया है। ब्रज घिरे हुए बाड़े के रूप में होते थे। इनमें गाय, बैल, भैंस, अश्व, भेड़, बकरी आदि सभी रहते थे। गोशाला, अथर्वेद में गोशाला के विषय में मुख्य रूप से ये बातें कही गई हैं। 1 गायों आदि के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान हो, अन्न जल की ठीक व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, दिन वाली सुविधाएं रात्रि में भी रहे। 2 वे इकट्ठे घूम सके, किसी प्रकार का कोई भय न हो, पशुओं को रोग मुक्त रखा जाए। 3 नई गाय आदि भी आती रहे, सभी पशु हृष्ट पुष्ट हो, वे बच्चे को जन्म दे। गौशाला में पशुओं के पालन पोषण की पूर्ण व्यवस्था हो, जिससे उनकी वृद्धि हो। 5 वे निरोग और दीर्घायु हो। पशु संवर्धन, अथर्वेद के अन्य कुछ मंत्रों में पशु संवर्धन से संबद्ध ये बातें कही गई हैं। 1 पशुओं के लिए चारे की सुंदर व्यवस्था हो, जिससे वे हृष्ट पुष्ट रहे, वे घास खावे, शुद्ध जल पीवे, घूमने के लिए बाहर जावे, गायों के सुंदर बछड़े हो, हौज में शुद्ध जल पीवे, उन्हें चोरी का भय न हो। 3 पशुओं को शुद्ध वायु मिले, सूर्य का प्रकाश उन्हें शक्ति दे, पशु इकट्ठे होकर चले, घूमे और रहे, पशु संरक्षण के द्वारा दूध और घी प्राप्त हो, पशु धन की वृद्धि हो। जहाँ गाय आदि पशुओं का संरक्षण होता है, वहाँ धन धान्य और श्री की वृद्धि होती है। गो महिमा वेदों में गाय का बहुत महत्व बताया गया है। गाय को विराट ब्रह्म का रूप माना गया है, उसमें सभी देवों का निवास है। गाओ भगह, गाय सौभाग्य का चिन्ह है। गाय इंद्र की प्रतिनिधि है, गाय सोम की पहली घूंट है। एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि गाय आई और हमारा कल्याण हुआ, ये गौशाला में आनंद से रहे। गायों की प्रशंसा में अथर्वेद में कहा गया है कि ये कृष्ण को हृष्ट पुष्ट बनाती हैं और निस्तेज को तेजस्वी बना देती हैं, अतः सभाओं में इनका गुणगान होता है। गाय को अघन्या बताते हुए इसे सौभाग्य का चिन्ह बताया गया है। गाय में इन गुणों का समावेश बताया गया है। वर्चस, तेज, भग, यश, पयस। ऋग्वेद और अथर्वेद से ज्ञात होता है कि गायों आदि के कान पर पहचान के लिए कुछ अंक आदि लिख दिए जाते थे। ऋग्वेद में वर्णन है कि गाय के दोनों कानों पर तांबे की शलाका से मिथुन 2 अंक या 2 लकीर बना दो, इससे गाय की प्रसव की योग्यता और दुग्ध की वृद्धि होती है। क, सहस्त्रम में ददतो अष्ट कर्णेह। ख, लोहितेन स्वधीतिना मिथुनम कर्णयोः कृधि। पशु हत्या का निषेध। वेदों में पशु हत्या को दंडनीय अपराध माना गया है। यजुर्वेद ने स्पष्ट किया है कि अभयम् नः पशुभ्यः, पशु निर्भय रहे। गाय को अघ्न्या अबध्य कहा गया है। ऋग्वेद में गोहत्या करने वाले का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्देश है। अथर्वेद में कहा गया है कि द्विपाद और चतुष्पाद जीवों की हत्या न करो, गाय, घोड़े और मनुष्य की हत्या न करो, निरपराध की हत्या करना दंडनीय अपराध है। यजुर्वेद में पशुओं का नाम लेते हुए कहा गया है कि गाव, गवय, नील गाय, द्विपाद पशु, एक शफ वाले पशु, चतुष्पाद पशु, ऊंट और भेड़ आदि को न मारो। यजुर्वेद में ही घोड़े की हत्या को दंडनीय अपराध बताया गया है। पशु संपदा की उपयोगिता। वेदों में पशु संपदा के अनेक लाभों का उल्लेख है। कुछ लाभ ये हैं: एक, दूध, दही, घी, मक्खन आदि की प्राप्ति। दो, बैलों आदि का कृषि में उपयोग। तीन, भारवाहक पशु के रूप में गर्दभ, बैल, ऊंट, खच्चर आदि का उपयोग। चार, घोड़ों के द्वारा रथ संचालन और उनका युद्ध में भाग लेना। पाँच, भेड़ आदि के ऊन से ऊनी वस्त्रों का निर्माण। छह, मृत पशुओं की खाल से चर्म उद्योग, जूते, धृति वर्म आदि का निर्माण। सात, पशुओं के गोबर का खाद के रूप में उपयोग। हाथी के दांत का कलाकृतियों में उपयोग। नौ, हाथी, घोड़े, ऊंट आदि की का सवारी के लिए उपयोग।